प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने जो विषय चुना है वह काफी कुछ अनयूजुअल सा है। अनयूजुअल सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम कुछ आंकड़ों की भाषा में बातें करेंगे और आंकड़ों की भाषा में कुछ इस तरीके से बातें करेंगे कि ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। आंकड़ों का जो इतना बड़ा जंजाल होता है, भूल भुलैया होती है, उस जंजाल को कैसे सुलझाया जाए और उस भूल भुलैया से कैसे पार पाया जाए। नो डाउट फ्रेंड्स कि जो आंकड़े होते हैं वो अपनी बात को प्रामाणिक तौर पर रख पाने के बहुत बड़े साधन होते हैं, आधार होते हैं। और यदि आपके पास अच्छे आंकड़े हैं जो तर्कपूर्ण हैं, डेफिनेटली जो सही हैं और जो वहां एप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं, तो मान करके चलिए कि यह सिद्ध करता है कि इस टॉपिक पर आपकी जो समझ है, जो आपकी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। लेकिन संकट क्या होता है फ्रेंड्स? जो संकट होता है, जो मैंने महसूस किया है खुद के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो संकट ये होता है कि जब हम आंकड़ों की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं या कह लीजिए हमारे दिमाग में ये बात है कि नहीं, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम करते क्या है? ठीक वही स्थिति हो जाती, समझ लीजिए कि जैसे कोई एक भूखा व्यक्ति हो और उसके सामने थाली परस दी जाए तो वो लगता है कि यार कितना ज्यादा से ज्यादा खा लो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना खा लो, भूख होती है। तो आंकड़ों के बारे में हमारी एक दिमागी भूख भी क्रिएट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि जैसे ही कोई आंकड़ा मिला, सामान्य तौर पर हमें लगा कि नहीं ये जानना चाहिए, तो हम उसे पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, मन ही मन दोहरा भी लेते हैं और नोट भी कर लेते हैं। तो शुरुआत तो हम कुछ आंकड़ों से करते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम जब इस प्रक्रिया को दोहराने लगते हैं, यानी कि फिर रोज ही ऐसा कर रहे हैं कि कोई ना कोई आंकड़ा दिमाग में रख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद पता लगा, कुछ दिनों क्या कुछ महीनों के बाद पता लगा कि हमारे पास आंकड़ों का एक जमावड़ा तैयार हो गया है। दुनिया भर के हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हो गए हैं। अब उसमें से छांटना मुश्किल हो रहा है कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। और उससे भी मुसीबत की बात है कि दिमाग में जो इतने सारे आंकड़े इकट्ठे हो गए हैं, अब जब उनमें गुत्थम गुत्था हो रही है तो ये आंकड़ा वहां, मतलब आंकड़े दल बदलना शुरू कर देंगे, यूं कह लीजिए, ये आंकड़ा उसमें चला गया, वो आंकड़ा इसमें आ गया। दरअसल होता यह है कि जब हम कोई एक आंकड़ा देखते हैं तो सरल सा होता, आंकड़े में रखा क्या है आप याद कर लीजिए और उसमें समझने जैसी कोई ज्यादा बात होती नहीं है। उस समय तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये अब याद रहेगा, यार ये बहुत स्पष्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब ये इकलौता आंकड़ा जो पहले से मौजूद आंकड़े हैं उनमें जाकर शामिल होता है, जैसे एक यात्री ट्रेन के डब्बे में चढ़ता है तो डब्बे में तो 70 लोग बैठे हुए हैं, अब एक ही चढ़ रहा है ना, तब आप जो 70 आदमी है वो तो उस एक आदमी को पहचान लेंगे कि ये चढ़ा है, लेकिन ये जो एक आदमी जो चढ़ा है ये तो 70 को नहीं पहचान सकता ना। कैसे पहचानेगा 70 को? उन 70 को तो सिर्फ एक को पहचानना है और इस एक को 70 को पहचानना नॉट पॉसिबल। आंकड़ों के साथ लगभग लगभग यही संकट पैदा होता है। मित्रों, जिसमें संकट की बात कर रहा हूं ये वाकई में मनोवैज्ञानिक संकट है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट है। मैंने खुद भी इसको झेला है, मैं भी इस द्वंद में रहा हूं। मैं तो ग्रेजुएशन में चूंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी था तो आंकड़ों से कुछ ज्यादा प्यार भी था, लेकिन पता लगा कि ये प्यार तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, जंजाल बनता चला जा रहा है, बोझ बनता चला जा रहा है। और नतीजा ये हो रहा है कि एग्जाम में अगर कभी कुछ लिख करके आ भी गए और बाद में जब मिलाए तो पता लगा कि किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, इसका आंकड़ा उसमें चला गया, उसका आंकड़ा इसमें चला गया। जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए कि अगर आप आंकड़े लिख रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, तो सही ही होने चाहिए, अदरवाइज आप आंकड़े मत दीजिए। आंकड़ों के साथ सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा चैलेंज यह है और सबसे बड़ी सावधानी भी यही है। आपको अगर परफेक्ट तरीके से मालूम है तब तो आप लिखिए, अगर जरा सा भी आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज मत डालिए अपने आंसर में आंकड़ों को, क्योंकि आंकड़ों की गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इसलिए पकड़ में आ जाएगी फ्रेंड्स, आप तो ठीक है 50-100 आंकड़ों में से एक आंकड़ा ला करके वहां डाल रहे हैं, लेकिन जो कॉपी जांचने वाले जो एग्जामिनर है उनको तो वो चीज मालूम ही है ना, क्योंकि वो तो आपकी कॉपी जांचने से पहले पूरी तैयारी के साथ आए हैं वहां, उनको मालूम है कि इसके बारे में ये आंकड़े हैं, तो उनको तो भ्रमित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हमारे भ्रमित होने का सवाल है। तो दोस्तों अब हम क्या करें, अब हम फिर करें क्या? नो डाउट, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके पास आंकड़े हैं और सही आंकड़े हैं, तर्कपूर्ण आंकड़े हैं, और जो टॉपिक जिस टॉपिक पर आप आंसर लिख रहे हैं उसको पर में वो बहुत सटीक बैठ रहे हैं, तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उससे आपके जो उत्तर की जो अहमियत है, उत्तर का जो वजन है वो बढ़ जाता है। लेकिन आंकड़ों के बारे में ये मान करके चलिए कि गलत लिखने की बजाय न लिखना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या क्या जाए, कैसे आंकड़ों को याद करें, क्या आंकड़ों के लिए भी कोई सिद्धांत हो सकता है, कोई बेस हो सकता है? फ्रेंड्स बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे खुशी है कि मैंने वो सिद्धांत निकाल लिया है, मैंने उस जद्दोजहद से अंततः मुक्ति पा ली। क्योंकि देखिए रास्ते, मैं तो ये मानकर चलता हूं फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, कि रास्ते तो होते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी दीवार भी दिखाई दे रही, बहुत बड़ी खाई भी है, या बहुत बड़ा पहाड़ भी है, ऊंचा पहाड़ है, लेकिन रास्ता तो है। अब ये बात अलग है कि इस पहाड़ को या तो आप चढ़कर पार करिए या तोड़कर पार करिए, खाई है तो आप कूद कर पार कीजिए या उसमें ब्रिज बना करके पार कीजिए, रास्ता तो है। तो मित्रों ये जो मेरा विश्वास है कि रास्ता तो है, इसने फिर मुझे रास्ता दिखाया और मैंने अंततः रास्ता पा ही लिया। इसलिए अब आंकड़ों को लेकर के ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होती, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होती है। हाँ, काम चल जाता है, काम चलाने लायक स्थिति में मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो में मैं अब आपको वो क्या सिद्धांत हो सकते हैं इनके बारे में तो कुछ बातें बताना चाहूंगा, और मैं इन सिद्धांतों की बात आपसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं करने जा रहा हूं कि मैं आपको पॉइंट गिनाऊं, टिप्स जिसको आप लोग कहते हैं ना, 1, 2, 3, 4 सिद्धांत, नो, मैं इस रूप में इसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं इसकी चर्चा बजट को आधार बना करके करने जा रहा हूं, बजट को आधार बनाकर। मैंने बजट को जानबूझकर आधार बनाया है दोस्तों, और वो अभी जो बजट आया उसको आधार बनाया है, उसके एक छोटे से सेगमेंट को आधार बनाया है, पूरे बजट को नहीं। और इसलिए बजट को आधार बनाया है क्योंकि आप जानते हैं कि बजट क्या है, आंकड़ों का जमावड़ा है, आंकड़े 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 आंकड़े। नो डाउट कि उसमें से आप यूं मान करके चलिए कि 98% तो आंकड़े, 99% आंकड़े तो हमारे काम के ही नहीं होते। सच पूछे तो 100% आंकड़े ही काम के नहीं होते हैं। अगर 1000 आंकड़ों में 10-15-20 आंकड़े हमारे काम के हो तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए। अगर आप ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे तो जो 10-20 याद है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम उन 10-20 को याद करें, समझ लें, दोहराते रहें, यूज करते रहें अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वो चीज आपके दिमाग में तरोताजा बनी रहेगी। इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आधार है फ्रेंड्स, अब मैं उस इंपॉर्टेंट आधार पर आ रहा हूं। देखिए आप किसी भी चीज को लिख लीजिए, बार बार अगर वो आंकड़ा आपको पढ़ने को मिलता है, बार बार आप उसे दोहराते हैं, लिखते रहते हैं, उपयोग में लाते रहते हैं, तो फिर तो वो तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। आपको इस बात में कोई भ्रम थोड़ी है कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, कोई भ्रम नहीं है। वो तो उसी तरह से है जैसे कि आप एक ही चीज को बार बार कह रहे हैं तो कहां जाएगी, भाग करके आपके पास ही रहेगी। लेकिन उसका बेस क्या हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि उसका स्तंभ क्या हो सकता है, क्या कोई स्तंभ है, कोई खंभा है हमारे पास कि उस खंभे को हम पकड़ लें और ज्यादा भटकने से बच जाएं। भटकना खत्म नहीं होगा लेकिन आप बच जाएंगे। और फिर मुझे लगता है कि कभी कभी अगर हम भटकने से बच भी जाते हैं ना तो इसका फायदा हमको प्री में भी मिल जाता है, प्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वहां भी हमको फायदा मिल जाता है। तो मित्रों आइए मैं अब आपको थोड़े से उस सिद्धांत के बारे में बताता हूं। दोस्तों होता क्या है कि हमको आंकड़े कभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में याद नहीं करने चाहिए। जैसे भारत मान लीजिए है तो भारत की जनसंख्या कितनी है, फिर ग्रामीण आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, लिटरेसी रेट कितना है, उसमें मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, इमॉर्टल रेट कितना है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, हेल्थ में कितने लोगों को प्रॉब्लम है, जीडीपी कितने परसेंटेज बढ़ रही है, राजकोषीय घाटा कितना है, इस तरह के दुनिया भर के आंकड़े होते हैं। लेकिन क्या इनका कोई बेस हो सकता है? यस, बेस हो सकता है। इनका बेस क्या होगा? देखिए, अभी जो मैंने सिंपल सी चीज बताई, इसमें आप राजकोषीय घाटे वगैरह को निकाल दीजिए तो अर्थव्यवस्था की बात हो गई। इनका जो बेस होगा कि भारत किस तरीके का देश है, भारत का जो करेक्टर है वो किस तरीके का है। भारत बहुत आबादी, दुनिया का दूसरा आबादी वाला देश है, पहला बेस हुआ। इसके बाद अशिक्षा है, गरीबी है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब आप देखिए कि सारे के सारे स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, और मैंने अभी जितनी भी बातें बताई आपको सब मालूम है। लेकिन शायद यह न मालूम हो, और सकता कि आप लोगों में से कुछ को मालूम हो, कि ये जो बेस है आप आंकड़ों को इन पर अप्लाई करके देखिए ना, आंकड़ों को आप इनमें फिट कीजिए। हमारा एक सामंती समाज है, सामंती समाज में क्या होगा, महिलाओं की स्थिति द्वितीय श्रेणी की रहेगी। तो आपको, आप देखेंगे कि जो जेंडर रेशियो है उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम होगी। लिटरेसी में आप देखेंगे तो महिला लिटरेसी कम होगी, मेल लिटरेसी ज्यादा होगी। मृत्यु दर में देखेंगे तो पता लगा कि मातृ मृत्यु दर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। ये कैसे आपको पता लगेगा? ये पता इस तरीके से लगता है दोस्तों, क्योंकि आपने अपने देश के करेक्टर को समझ लिया है कि ये किस तरह का देश है। फिर जब आप उसमें आंकड़ों को फिट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आंकड़े अलग से, जैसे कि आप देख, आप कभी अनार को काट करके देखिए तो अनार के दाने सब एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, उनके बीच बीच में बकायदे आपको खांचे मिलेंगे, पतली पतली झिल्लियां मिलेंगी, और नेचर ने कितने खूबसूरत तरीके से थोड़े से दानों को वो एक थैली में रखती है और उसमें फिट कर देती है, फिर एक दूसरी झिल्ली से एक थैला बनाती है उसमें रख देती है, ताकि वो दाने इधर उधर खिसके नहीं, उसमें बड़े आराम से फिट रहें। आंकड़े बस वो अनार के दाने ही हैं, और जो पूरा का पूरा अनार है फ्रेंड्स, वो उसका स्ट्रक्चर है, टोटल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर से, उस करेक्टर से आंकड़े निकलते हैं। याद रखिए कि उस करेक्टर से आंकड़े निकलते हैं। जिस दिन आप में यह क्षमता पैदा हो जाएगी, आप आंकड़ों के बादशाह हो जाएंगे। आइए अब मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखिए कि जब बजट आता है तो आंकड़े दुनिया भर के रहते, चलिए उस समय तो हमको उतना ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन बाद में आप जब एनालिसिस करते हैं और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित जब आप लेख पढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसमें से फिर बीच बीच में आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगता है, राइट। अब मित्रों, मैं आपको एक बेस बताता हूं। देखिए, इस बेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और मैं बताना चाहूंगा कि केवल समझने की कोशिश नहीं करना है बल्कि आपको इसे अप्लाई भी करना है। और यदि आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसका अगर कोई रिटर्न फॉर्म मिल जाए तो आप उसको अपने पास रख लीजिएगा, और अगर आपके पास लिखित न हो तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसे लिख भी लीजिए, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लिख भी लीजिए, तो उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, हम अपने बजट को लेते हैं। तो दोस्तों, आप अपने बजट, हमारी बजट के बारे में एक धारणा बना लीजिए। धारणा, बजट क्या है? सरकार कितना, सरकार के पास पैसा आएगा और फिर सरकार उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी, ये बजट है। तो बजट के बारे में एक मोटा मोटा आंकड़ा आप अपने दिमाग में बनाइए कि सरकार के पास 21.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे, 21.46 करोड़ रुपए एग्जैक्ट जो है वो 21,86,735 करोड़ रुपए है। तो उतने पे मत जाइए डिटेल पर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आंकड़ों का इस्तेमाल करते समय एक शब्द उपयोग में ला सकते हैं, वो है लगभग। तो आप लिख सकते हैं लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए। याद रखिए, लाख करोड़ है, 21.5 लाख करोड़, हजार और अरब करोड़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां अगर आप गड़बड़ करेंगे तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर न्यू गड़बड़ हो गई तो फिर इमारत तो गड़बड़ होनी ही है। 21.5 लाख करोड़ रुपए आते हैं और सरकार खर्च कर देती है, पूरा का पूरा खर्च कर देती है, वो कोई अपने पास खजाने में बचा कर रखती नहीं है। ये आपके ध्यान में आ गया। अब आप देखिए, अब ये रुपया आता कहां से है? ये 21.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है, ये कहां कहां से आ रहा है दोस्तों? इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, तब आप एनालिसिस करने की स्थिति में आएंगे, इंडियन इकोनॉमी की एनालिसिस करने की स्थिति में आएंगे। जब भारतीय व्यवस्था में सुधार करने की बात होती है, टैक्स रिफॉर्म की बात होती है, एक्सपेंडिचर की बात होती है, सोशल सेक्टर की बात होती है, तो अब आपको मैं बहुत थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, हो सकता है आप जानते भी हों, आप इसके आधार पर सारे नतीजे निकाल सकते हैं। जैसे कि सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, कितना आता है? 21.5 लाख करोड़ रुपए। आप देखिए कि इसमें से 19% 20% के आसपास, मतलब पांचवा हिस्सा, आप सोचिए कि केवल एक सेक्टर से आता है, विच इज कॉल्ड कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। मैंने डेली ऑडियो में आपको कॉरपोरेट टैक्स समझाया था, ये वो कर है, आप कह लीजिए कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला इनकम टैक्स है, एक सेक्टर से आता है, सोचिए 19% सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स आयकर से आ रहा है, कंपनियों पर लगाए जाने वाले टैक्स से। ये तो दोस्तों निगम कर से आ रहा है, और इसके बाद जो इनकम टैक्स जो आप और हम देते हैं, इससे 16% आ रहा है, 16%। अब आप जो 21.5 लाख करोड़ है उस पर मत जाइए, आप परसेंटेज याद रखिए और फटाफट पे वहां निकलता चला जाएगा, क्योंकि अगर आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे कि भाई 19% का कितना हो गया, फिर 16% का कितना हो गया, अभी आप उस चक्कर में मत पड़िए, जब जरूरत पड़ेगी तो चक्कर में पड़ जाइएगा, निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास लगभग जैसा एक शब्द है जिसमें सब समा जाएंगे। अब आप 19% और इस 16% को मिला दीजिए फ्रेंड्स, तो आपको पता लगेगा कि 35% टोटल सरकार की जो आमदनी है वो इनकम टैक्स से, सो कॉल्ड इनकम टैक्स से है, 35%। आप देख रहे हैं कि इसलिए सरकार इसको छूने की हिम्मत नहीं करती कि यार इसमें लोगों को रियायत दे दी जाए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसमें रियायत दे दी गई, क्योंकि 35% ला रहा है वो, सोचिए तो लगता है कि हमारा खजाना ही खाली हो जाएगा, तो सरकार डरती है। 35% कॉरपोरेट टैक्स, 19% प्लस इनकम टैक्स 16%। इसके बाद फ्रेंड्स जो 14% जो है, 14% जो उसकी आय है वो सेंट्रल एक्साइज से आती है, 14% जिसमें सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स जाते हैं, 14% आप सोच के देखिए। और अगर उसमें आप सीमा शुल्क को लगा दें, सीमा शुल्क का है 9% और उसमें 14% को जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 23%। अब मित्रों आप 35% में 23% जोड़ दीजिए, 35 में 23% जोड़ देंगे तो पता लगेगा 58% गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो मिलता है वो थ्रू टैक्सेस मिलता है, थ्रू टैक्सेस, आप सोच करके देखिए। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है थ्रू टैक्सेस, मतलब ये तो मैं आपको एक अलग तरह के टैक्स बता रहा हूं जिसके बारे में आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा टैक्स है जिसे आप सर्विस टैक्स कहते हैं, सर्विस टैक्स आप देते होंगे, सर्विस टैक्स से आता है 10% एक रुपए में 10 पैसे सर्विस टैक्स से, यानी कि इसको आप कन्वर्ट करने के 21.5 लाख रुपए में तो पता लग रहा है कि 2 लाख आपके सॉरी 21,000 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स से आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। ये टैक्सेस हमारे कलेक्शन के हैं। अब आपको छोटी छोटी चीजों पर जाने की जरूरत नहीं है कि कहां है, कहां से आता है, और थोड़े थोड़े और उसके डिटेल्स हैं। अब मैं आपको संक्षिप्त में जल्दी से बता देता हूं कि टैक्स ये हमारा पैसा लगता कहां है, खपता कहां है, जाता कहां है। इसका सबसे बड़ा भाग फ्रेंड्स जो 24% है वो राज्यों के पास चला जाता है, हमारे टैक्स का जो हमारा जो हमने देखा ना आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम टैक्स, इसका 24% कुल, मतलब कुल का 24% राज्यों के पास चला जाता है, क्योंकि राज्यों का भी हिस्सा है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में है, फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करता है। और सबसे बड़ा जो बड़ी जो दुखद स्थिति है, मैं दो आंकड़े आपको और बताऊंगा बस फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उलझ जाएंगे, कि जो 18% बहुत बड़ी रकम होती है, 18% मालूम है किसमें चला जाता है? जो हम ऋण लेते हैं केवल उनके ब्याज की अदायगी में। ऋणों पर ब्याज 18% बहुत बड़ी रकम है। सोच करके देखिए कि 18% हम सिर्फ ब्याज का भुगतान करने में दे देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम सोशल सेक्टर में जाएंगे तो उसमें मैं अभी अलग से नहीं कहूंगा, लेकिन 10% सब्सिडी पर चला जाता है, जो सरकार सब्सिडी देती है। आप है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सब्सिडी दे दी जा रही है। एलपीजी में सब्सिडी है, केरोसिन ऑयल में सब्सिडी है, यूरिया खाद वगैरह में सब्सिडी है। ये जो सब्सिडी दी जा रही है इसमें चला जाता है 10%, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, आप देख लीजिए कि कितना हो जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में। और दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए कि पैसा कहां कहां जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैंने परसेंटेज में निकालते हुए कि कितने लाख करोड़ रुपए, अगर कहीं कोई डेटा गलत हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डेटा उस तरह से निकाल कर रखा नहीं था, ये तो बोलने के दौरान मेरे मुंह से निकल गया। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं हजार और लाख में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ परसेंटेज में आपको समझाया है। तो जब आप बजट के बारे में ये मोटी मोटी धारणाएं रख लेंगे तो आप देखेंगे कि फिर बजट में जो आंकड़े आप पढ़ेंगे आगे चल करके, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी दिक्कत। ये तो मैं नहीं कहता कि जीरो हो जाएगी, लेकिन आपको एक रास्ता मिलने लगेगा, भले वो जंगल का ही रास्ता क्यों ना हो, पगडंडी ही दिखाई क्यों ना दे, लेकिन आपको लगेगा तो हाँ, इस पे अगर हम चले तो जंगल से बाहर निकल जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा, और वास्तव में वो काम चल भी जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको आंकड़ों के बारे में बताया, और आप इसे करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको इससे फायदा होगा। शुरू में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनइजी सा महसूस करें, लेकिन ये ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, आपकी आदत पड़ जाएगी और आपके दिमाग में आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से रहने लगेंगे, और फिर आप उनका इस्तेमाल देखिए कि कितने अच्छे तरीके से एग्जाम में करते हैं, भटकेंगे नहीं, गलत नहीं लिख करके आएंगे, और वो आपके नंबरों में ऑटोमेटिक रूप से इजाफा कर देगा। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।